भीड़ के बीच पसरी वो भारी खामोशी अभी पूरी तरह टूटी भी नहीं थी कि विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें अब भी उस अंगूठी पर टिकी थीं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उलझन से ज्यादा एक फैसला दिख रहा था। उसने धीरे से अक्षरा की तरफ देखा। अक्षरा, उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। अक्षरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा, आंखों में अब भी वही सवाल, वही चोट। विश्वनाथ ने बिना घुमाए फिराए कहा, इस रिंग को भूल जाओ। एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया। अक्षरा की पलकें झपकना तक भूल गईं। क्या, उसके होठों से खुद बखुद निकला। भीड़ में खड़े लोग भी जैसे एक साथ सन रह गए। विश्वनाथ ने आगे कहा, कल मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी रिंग लाऊंगा। उसने एक सेकंड रुककर उसकी आंखों में देखा। इससे बेहतर, परफेक्ट। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उस सच्चाई के पीछे कुछ और भी छुपा था जो सिर्फ महसूस हो सकता था। इसे जाने दो, ये आखिरी शब्द जैसे सीधे अक्षरा के दिल में गिरे। अक्षरा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसने अभी क्या सुना। उसके चेहरे पर गुस्सा, चोट और अहंकार तीनों एक साथ टकरा रहे थे। अदिति ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अक्षरा ने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने फिर से श्यामली की उंगली में पड़ी अंगूठी की तरफ देखा, फिर अपनी खाली उंगली की तरफ। एक पल के लिए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। थोड़ी ऊपर उठाई और धीरे से बोली, फाइन, बस एक शब्द। लेकिन उसमें हार नहीं थी, सिर्फ एक अधूरा समझौता था। कल देख लेंगे, उसने धीमे से जोड़ा। फिर बिना श्यामली की तरफ देखे वो मुड़ी और वहां से चली गई। अदिति ने एक आखिरी बार श्यामली को देखा। उस नजर में अब भी शक था और कुछ कड़वाहट भी। फिर वो भी अक्षरा के पीछे चली गई। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। फुसफुसाहटें अब भी थीं, लेकिन वो दूर जाती जा रही थीं। और कुछ ही मिनटों में वो हॉल फिर से सामान्य दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो हुआ था वो सबके अंदर कहीं ना कहीं रह गया था। रात थोड़ा और गहरी हो चुकी थी। हवेली के अंदर अब शोर कम हो गया था, बस हल्की हल्की आवाजें और दूर से आती संगीत की धुन। विश्वनाथ अपने कमरे में खड़ा था, खिड़की के पास। उसके हाथ अब भी जेब में थे और नजरें बाहर अंधेरे में कहीं खोई हुई थीं। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने बिना मुड़े कहा, आओ। दरवाजा धीरे से खुला। श्यामली अंदर आई। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी थकान जरूर थी। उसके हाथ में एक फाइल और एक छोटा सा बैग था। ये, उसने धीरे से कहा, इवेंट का पूरा अकाउंट। वो आगे बढ़ी और टेबल पर फाइल रख दी, सारे खर्चे और जो अमाउंट बचा है। उसने बैग टेबल पर रखा, ये सब इसमें है। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा, फिर टेबल पर रखे बैग की तरफ। कुछ सेकंड वो कुछ बोला नहीं, फिर धीरे से सिर हिलाया, ठीक है। श्यामली मुड़ने लगी, जैसे अब वो बस जाना चाहती हो। लेकिन तभी विश्वनाथ की आवाज फिर आई, रुको। वो ठिठक गई, धीरे से पलटी। जी, विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। श्यामली ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। उसकी आवाज विनम्र थी लेकिन साफ थी। इतनी रात में, विश्वनाथ ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, और इतना तैयार होकर। उसने टेबल की तरफ इशारा किया, सेफ नहीं है। श्यामली ने हल्की सी मुस्कान दी, मैं संभाल लूंगी। लेकिन उसके इस जवाब में भी एक दूरी थी। विश्वनाथ कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर थोड़ा सख्त लहजे में बोला, मैं छोड़ देता हूं, बात खत्म। श्यामली ने फिर सिर हिलाया, इस बार थोड़ा और दृढ़ होकर, नहीं, सच में जरूरत नहीं है। उसकी आंखें अब उसकी आंखों में थीं, जैसे वो ये साफ कर देना चाहती हो कि ये जिद नहीं, एक फैसला है। कुछ सेकंड दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर विश्वनाथ ने हल्की सी सांस ली और सिर हिलाया, ठीक है, उसने कहा, लेकिन तुरंत ही जोड़ा, तो आर्यन के साथ चली जाओ। श्यामली थोड़ी चौंकी, वो बाहर ही है, विश्वनाथ ने कहा, कम से कम उसके साथ तो सेफ रहेगा। श्यामली कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है, उसने सिर हिलाया। कमरे में फिर एक हल्की सी खामोशी उतर आई। श्यामली मुड़ने लगी, लेकिन तभी दोनों की नजरें एक बार फिर मिली। इस बार वो नजरें थोड़ी देर तक टिकी रहीं, बिना किसी शब्द के, जैसे कुछ कहना बाकी हो। विश्वनाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखा गया। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसकी नजरें सीधे उसकी उंगली पर गईं, जहां वो अंगूठी अब भी थी। श्यामली ने अनजाने में हाथ थोड़ा पीछे करना चाहा, लेकिन फिर रुक गई। विश्वनाथ ने बहुत हल्के से उसका हाथ पकड़ा, इस बार बिना किसी जल्दबाजी के। उसकी उंगली को देखा, जहां खींचने की वजह से हल्की सी लाली आ गई थी। दर्द हो रहा है? उसने धीमे से पूछा। श्यामली ने एक सेकंड उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। थोड़ा, उसने धीरे से कहा। विश्वनाथ ने सिर हिलाया, फिर टेबल से एक छोटी सी दवाई की ट्यूब उठाई। घर जाकर ये लगा लेना। उसने ट्यूब उसकी तरफ बढ़ाई, सूजन कम हो जाएगी। श्यामली ने वो दवाई ले ली। उसकी उंगलियां हल्के से उसकी उंगलियों से छू गईं। एक पल, बस एक पल, लेकिन उस पल में जैसे बहुत कुछ ठहर गया। थैंक यू, उसने धीमे से कहा। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। दोनों फिर कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे, बिना बोले। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर श्यामली ने धीरे से हाथ पीछे किया, दवाई को कसकर पकड़ते हुए। मैं चलती हूं, उसने कहा। विश्वनाथ ने उसे देखा और बस इतना कहा। श्यामली मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलते वक्त उसने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। विश्वनाथ अब भी वहीं खड़ा था, उसी जगह, उसी तरह। उनकी नजरें एक बार फिर मिली। इस बार कुछ भी उलझा हुआ नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। फिर श्यामली ने नजरें हटा ली और बाहर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ विश्वनाथ था और उसके दिमाग में वही एक तस्वीर, एक उंगली और उसमें परफेक्टली फिट होती हुई वो अंगूठी।